पिछली बार महाभारत की कथा में चर्चा ये कर रहे थे कि कैसे अर्जुन और श्री कृष्ण जब एक साथ रह रहे थे तो एक समय वे खांडव वन में गए और फिर वहाँ पर अग्नि देव के कहने पर जो ब्राह्मण के रूप में आए थे उन्होंने मदद की अग्नि की खांडव वन को जलाने के लिए, और जिसके कारण मय दानव ने उनके ऊपर उनको कुछ उपहार देना चाहा और श्री कृष्ण ने तब मय दानव से कहा कि आप एक बहुत सुंदर सभागृह बनाइए, एक महल बनाइए जिसमें पांडव जिस सभा में बैठ सकें। तो ऐसी सभागृह का निर्माण मय दानव ने किया, बहुत सुंदर थी वो, बहुत विस्तार से वर्णन है महाभारत में उसका, ऐसी थी कि मानो इंद्र की सभा हो, पृथ्वी पर उसके समान कोई और सभा नहीं थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस सभा में प्रवेश किया, सबने बड़ा गुणगान किया युधिष्ठिर महाराज का। तो एक समय नारद मुनि वहां पर आए और नारद मुनि ने जब वहां प्रवेश किया तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ा स्वागत किया, उनका सभी पांडवों ने स्वागत किया और फिर युधिष्ठिर महाराज से कई प्रश्न किए नारद मुनि ने। दरअसल प्रश्नों के रूप में वे ज्ञान को दे रहे थे, बहुत लंबे प्रश्न हैं उनके, कई प्रश्नों को किया लेकिन उन प्रश्नों के द्वारा दरअसल वो ज्ञान प्रदान कर रहे थे। जैसे वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है ना, अर्थात वो कहना चाहते थे कि धन को राजा को केवल सही जगह लगाना चाहिए, धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। फिर ऐसे कई चीज़ें उन्होंने पूछी, क्या तुम्हारा धन शुद्ध हो रहा है, क्या तुम्हारा मन शुद्ध है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को पूछते हुए उन्होंने ज्ञान दिया। और फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज ने जब ज्ञान ग्रहण कर लिया तो उन्होंने एक प्रश्न किया नारद मुनि से कि आप तो बहुत जगह जाते हैं, इंद्र की सभा में, वरुण की सभा में, यमराज की सभा में, तो ये जो सभागृह बना है नया, तो ऐसे आपने और कहीं देखा है ऐसा सभागृह? तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि मैं तो बहुत जगह विचरण करता हूँ, पृथ्वी पर तो मैंने ऐसा सभागृह और कहीं नहीं देखा, पृथ्वी पर ये ऐसा जो सभागृह है इसके कोई मेल नहीं है, लेकिन हाँ स्वर्ग लोकों में, ऊंचे लोकों में बहुत ऐश्वर्यशाली सभागृह हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप उसका वर्णन कीजिए, कौन कौन से हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने वर्णन प्रारंभ किए, उन्होंने इंद्र की सभा का वर्णन किया, उन्होंने वरुण की सभा का वर्णन किया, यमराज की सभा का वर्णन किया, कुबेर की सभा का वर्णन किया और ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन किया। तो हर सभा का वर्णन करते हुए वो बताते कि वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसमें कहाँ कहाँ हीरे लगे हुए हैं, क्या क्या बना हुआ है और साथ साथ कौन उसमें विराजमान होते हैं, कौन बैठते हैं उसमें। तो उन्होंने जब यमराज की सभा का वर्णन किया तो बहुत सारे राजाओं का नाम लिया, जब उन्होंने इंद्र की सभा का वर्णन किया तो केवल देवताओं का नाम लिया और एक ही राजा का नाम लिया, केवल एक राजा का नाम। जब उन्होंने वरुण की सभा का वर्णन किया तो उसमें गंधर्वों इत्यादि का वर्णन किया और फिर अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन किया। और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन कर नहीं सकते क्योंकि वो हर क्षण बदलती रहती है, बड़ी विशेष सभागृह है, हर क्षण अपने आप बदल जाती है और वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, वैरागी इत्यादि विराजमान होते हैं ब्रह्मा जी की सभा में। तो ऐसा वर्णन करने लगे। तो ये वर्णन सुनकर युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न आया, उन्होंने कहा आपने सारी सभाओं का वर्णन किया और हमने सुना कि केवल एक ही सभा में आपने वर्णन किया कि जहाँ जो राजा हैं, जो राज ऋषियों के समान है, वो जो विराजमान है, यमराज की सभा, लेकिन आपने इंद्र की सभा में राजा हरिश्चंद्र का वर्णन किया कि वो वहां विराजमान है, तो ऐसा क्यों है? बाकी सारे राजा यमराज की सभा में हैं और हरिश्चंद्र ये इंद्र की सभा में बैठते हैं, तो ऐसा क्यों विशेष है? तो उस समय नारद मुनि उन्हें हरिश्चंद्र का इतिहास सुनाने लगे कि कौन है हरिश्चंद्र। तो उन्होंने कहा कि बहुत महान राजा हुए हरिश्चंद्र, और इंद्र की सभा में उनका बैठने का एक प्रमुख कारण है कि उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ करने के कारण वो इंद्र की सभा में बैठने के योग्य हो गए, और अन्य कोई राजा इंद्र की सभा में बैठने के योग्य नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि आप इतने समय गए आपने अन्य सभाओं में, मेरे पिता से भी आप मिले होंगे, तो उन्होंने कोई संदेश दिया मेरे लिए पांडु महाराज ने? तो उन्होंने कहा हाँ, पांडु महाराज ने आपको ये संदेश दिया, या आपके पिता ने आपको ये संदेश दिया कि आपको भी एक राजसूय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि जब आप राजसूय यज्ञ करोगे तो आपके यज्ञ करने से मुझे इंद्र की सभा में बैठने का पद प्राप्त हो जाएगा। ये कह के फिर नारद मुनि चले गए। अब युधिष्ठिर के मन में आया कि मुझे राजसूय यज्ञ करना चाहिए, तो वैसे तो वो राजा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सब मंत्रियों को बुलाया, भाइयों को बुलाया, और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, उनको पूछा कि क्या करें, मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मुझे राजसूय यज्ञ करना चाहिए, आप सबका क्या कहना है? तो सारे मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप योग्य हैं, आपको करना चाहिए। देखिए युधिष्ठिर महाराज एक बहुत सुंदर आदर्श हम सब के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कहते हैं या अपने आचरण से दिखलाते हैं कि भले ही वो राजा हैं, वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको पूछ कर कार्य करते हैं। एक जो नेता होता है या जो किसी दल का या किसी समाज का, किसी राष्ट्र का जो नेतृत्व करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, एक सीख है कि अगर वो नेता बनना चाहें तो फिर उन्हें इस तरह के कार्य कर लेने चाहिए, अर्थात उन्हें सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। भले वो राजा थे युधिष्ठिर महाराज, अगर वो कहते कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है, करना ही पड़ता सबको, उनका अधिकार भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको साथ में लिया। इसलिए एक राजा के लिए अनिवार्य है कि वो सबको साथ में लेकर चले, क्योंकि उससे राजा में अहंकार नहीं आता, और ना ही जो उसके अन्य उनके सहयोगी हैं वे लोग भी कभी विरोध नहीं करते राजा का। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम लोग रामायण में देखते हैं। रामायण में दशरथ महाराज राजा थे, कोई उनका विरोध नहीं करता था, और उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे रामचंद्र को राज्याभिषेक करवाना है, रामचंद्र का राज्याभिषेक होना चाहिए, मेरा पुत्र है राम सबसे बड़ा, अब उसको राजा बनाएंगे। तो अब देखिए वो राजा थे, बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे जितने उनके अधीन राजा थे उनको बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, और भी जो लोग ऋषि मुनि इत्यादि उनको बुलाया, और फिर उन सब के साथ सलाह की कि मैं राम को, और पहले उनको बताया कि देखिए राम में ये गुण हैं, और फिर उनसे कहा कि मैं रामचंद्र को मैं राजा बनाना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? और फिर जब सब ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, करना चाहिए, तब उन्होंने ये कार्य किया। तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम कभी भी पद के अहंकार में नहीं आए। अगर जीवन में हमें कोई पद मिलता है, वो चाहे भक्ति में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, हमें उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज दिखला रहे हैं कि पद का अहंकार ये बहुत खतरनाक है। तो हमें, जैसे वो राजा बन गए तो अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। तो इसीलिए हम सब के लिए उपदेश है कि ना तो हमें पद का अहंकार हो, और ना ही हम उस पद का दुरुपयोग करें, तब हम सही दृष्टि में उस पद पे बने रहने के योग्य हैं। लेकिन अगर हमें पद का अहंकार हो जाए, हम पद का दुरुपयोग करने लगें, तो फिर हमारी योग्यता चली जाएगी। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने सबको बुलाया, सबने अनुमति दी, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि ये सब तो ठीक है, सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे कृष्ण क्या चाहते हैं वो भी जान लेना चाहिए। देखिए, राजसूय यज्ञ करना बहुत कठिन था उस समय, ऐसा नहीं कि बहुत सरल था, अन्य यज्ञों की तरह नहीं था ये। तो उसको आकर श्री कृष्ण समझाएंगे कि क्यों कठिन था। तो खैर, युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं श्री कृष्ण से पूछ लेता हूं। तो उन्होंने तुरंत अपना एक दूत भेजा। तो दूत गए द्वारिका में, जहाँ श्री कृष्ण उस समय रह रहे थे। तो द्वारिका में जाकर उन्होंने, दूत ने पूछा, कहा कि भाई, बहुत विनती की, बड़े नम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य लोग वहाँ पर, वे आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आपसे कुछ मंत्रणा करना चाहते हैं। तो फिर तुरंत भगवान उनके साथ आ गए, श्री कृष्ण। वैसे एक कारण और भी था, ये तो मंत्रणा करनी ही थी, लेकिन युधिष्ठिर कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। कृष्ण चले गए थे, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं हुए थे, तो उन्होंने सोचा कृष्ण के दर्शन करने चाहे। और कृष्ण भी देखिए, जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरा भक्त मुझे देखना चाहता है, मेरे दर्शन या मुझसे कुछ पूछना चाहता है, तुरंत उसी दूत के साथ वो चले आए। तो ये भगवान है, जब हम अपनी हृदय की आतुरता श्री कृष्ण के सामने प्रदर्शित करते हैं, तब श्री कृष्ण हमारे पास आने के लिए वो भी आतुर हो जाते हैं। अर्थात जब हम अपने कार्यों से, अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से हम ये दिखलाते हैं कृष्ण को कि हम उन्हें पाना चाहते हैं, ये सब हम उनके लिए कर रहे हैं, केवल उनकी प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो कृष्ण भी बाध्य हो जाते हैं। ये प्रेम है कृष्ण का। ऐसा ही प्रसंग हम रुक्मिणी के अपहरण के समय देखते हैं। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करना चाहते थे, रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा था उन्हें। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैंने आपके विषय में सुना है और सुनकर मेरा आपके प्रति अनुराग, आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो उस समय भगवान ने कहा कि मेरी भी इच्छा है, मैं भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देखिए, जितनी तीव्रता हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की होगी, उतनी ही तीव्रता से, उससे कहीं अधिक तीव्रता से भगवान हमारे पास आएंगे। इसलिए अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो हमें हृदय में तीव्रता लानी चाहिए। कैसी तीव्रता? जैसे मान लीजिए कि किसी माता का पुत्र पहली बार घर छोड़कर कहीं बाहर जाता है, हॉस्टल में रहने के लिए जाता है, कहीं पढ़ाई के लिए दूर जाता है, तो कैसे उस माँ को, जिसने कभी अपने बच्चे को अलग नहीं किया, तो सदैव उसके लिए चिंता रहती है उसके मन में, वो सदैव उसका स्मरण करती है कि कहाँ क्या कर रहा होगा, खाया होगा या नहीं खाया होगा, कैसे रह रहा होगा, उसने ठीक से, उसको रहने का स्थान होगा या नहीं, इत्यादि इत्यादि सदैव चिंतन रहता है। जैसे हमारी संस्था के एक सन्यासी बता रहे थे कि वो अमेरिका से हैं और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार भारत में आ गए, भारत से उन्होंने पत्र लिखा। तो उस समय वो थोड़ा आध्यात्मिक भावनाओं में थे, तो पत्र में लिखते थे अपनी माँ को, पत्र लिखते थे अमेरिका में कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इसीलिए हमें केवल श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। और उनकी माता का पत्र वहाँ से आता था, तुम ठीक से खा रहे हो कि नहीं, तुम्हें खाने को मिल रहा है या नहीं, अर्थात वो माँ है, तो उनको वही चिंता है, उनको शरीर आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। ये अपने पत्रों में लिखते थे, हम शरीर हैं, हम शरीर से परे हैं, हम आत्मा हैं, हमें ज्यादा इस भौतिक जगत से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान को पाना यही जीवन का ध्येय है, ये सारी बातें वो लिखते थे। और उनका पत्र का उत्तर आता था तो उसमें माता लिखती थी, तुम ठीक से खा रहे हो कि नहीं। तो माँ को यही चिंता है। तो जिस तरह वो चिंता होती है एक माँ को जब पुत्र दूर चला जाता है, तो वो स्मरण करती रहती है तीव्रता से, भले अपने कार्य करते रहे लेकिन मन में उसका यही रहता है कि मेरा पुत्र क्या कर रहा होगा। ऐसी तीव्रता, उससे भी कहीं अधिक तीव्रता हमें कृष्ण को पाने के लिए होनी चाहिए। अब आप सब अपने अपने हृदयों में झांक कर देखिए कि दिन में कितनी बार हम लोग ऐसी भावना हृदय में लाते हैं, दिन में कितनी बार हम इस बात को हृदय में लाते हैं कि मुझे कृष्ण को पाना है। तीव्रता तो छोड़ दीजिए, पूरा स्मरण कृष्ण का छोड़ दीजिए, लेकिन कितनी बार हमारे हृदय में केवल ये बात आती है कि मुझे कृष्ण को पाना है, मैं केवल कृष्ण को पाना चाहता हूं और कोई इच्छा नहीं है। ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, समाज में रह रहा हूं, परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, या फिर मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, मैं ब्रह्मचर्य होकर सन्यासी होकर मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, कृष्ण की प्राप्ति। अगर ये हमारे मन में नहीं आ रहा, हम बाकी सारे कार्य कर रहे हैं, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, हम ब्रह्मचारी होकर हम बहुत प्रचार कर रहे हैं, सन्यासी होकर जगह 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 जाकर हम लोगों को कृष्ण का विषय सुना रहे हैं, लेकिन अगर हृदय में ये भावना नहीं है कि ये सब केवल कृष्ण को समर्पित है, ये सब केवल कृष्ण के लिए है और मेरी एक ही इच्छा है कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति, उनकी सेवा, अगर ये भावना नहीं है तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं। जब शुद्ध भक्ति की वो परिभाषा देते हैं तो वो कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति वो है जहां अन्य अभिलाषा शून्य हो जाए। हम प्रचार इसलिए नहीं करें कि कोई हमारा गुणगान करे, अन्य अभिलाषा। हम परिवार को इसलिए नहीं चलाएं कि बस मेरा परिवार सुखी रहे लेकिन कृष्ण का स्मरण ना हो, अन्य अभिलाषा। परिवार चलाते हुए, व्यापार करते हुए, प्रचार करते हुए एक ही उद्देश्य, कृष्ण की प्रसन्नता, तब हम सही दृष्टि में कृष्ण को पाने के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी तीव्रता हृदय में जब होगी तो कृष्ण भी बड़े आतुर होंगे। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरे पास आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से जिस तरह से मेरे पास आता है, मेरी शरण में आता है, ताम्स तथैव भजाम्यहम्, मैं उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करता हूं। तो जो भगवान के पास भगवान को शत्रु मानकर जाते हैं, भगवान के विरोधी बनकर जाते हैं, भगवान उनको वैसा ही भावना दे देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि वो भगवान को शत्रु मानना चाहें, श्रावण, हिरण्यकश्यप इत्यादि, कंस, तो भगवान उनसे शत्रु के रूप में मिलते हैं। जो लोग भगवान के पास वात्सल्य भाव लेके जाते हैं, जो चाहते हैं कि भगवान मेरे पुत्र बने, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद महाराज, तो भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। वही भगवान जो उनके भी स्वामी हैं, उनके भी भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि यशोदा के पुत्र होने से, देवकी पुत्र होने से देवकी उनसे बड़ी हो गई, वो भगवान ही हैं, उनके लिए भी भगवान हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कामना की कि मैं पुत्र के रूप में आपको प्राप्त करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। कोई कामना करता है कि मेरे सखा के रूप में हूं अर्जुन, तो भगवान सखा के रूप में आते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जैसे भी हम भगवान को जिस भाव में चाहते हैं भगवान उस भाव में प्रकट होते हैं। तो देखिए, अगर कोई द्वेषी रूप में, विरोधी रूप में, शत्रु रूप में भी भगवान को बड़ी तीव्रता से पाने का प्रयास करता है, भगवान उसके सामने आ सकते हैं। तो अगर हम भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान को पाने का प्रयास करें, तीव्रता हृदय में लाएं, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। भागवत में नारद मुनि समझाते हैं, गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषात चेदादय नृपः। वो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। गोप्या कामा, गोपियों ने प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। भयात कंसो, कंस ने भय से, इतना तीव्र भय था उसको कृष्ण के प्रति कि कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए, भले शत्रु के रूप में, मृत्यु के रूप में, लेकिन प्रकट हुए। गोप्या कामात भयात कंसो द्वेषाद चेदादय नृपः। चेदादय ने जो शिशुपाल इत्यादि नरेश थे, राजा थे, उन्होंने भगवान से द्वेष किया। शिशुपाल बहुत द्वेषी था श्री कृष्ण का। युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न किया था नारद मुनि से कि आप बताइए, मैंने तो सुना है कि ये शिशुपाल, ये जब छोटा सा बच्चा था तब से श्री कृष्ण की निंदा कर रहा है, बोलना नहीं जाता था, तुतलाकर बोलता था, तब से निंदा कर रहा है श्री कृष्ण की, इतना द्वेषी था वो। तो उन्होंने द्वेष से प्राप्त किया। और वृष्णियों ने संबंधात, वृष्णियों ने संबंध से प्राप्त किया। और पांडवों ने प्रेम से, स्नेहात, स्नेह से पांडवों ने प्राप्त किया। और नारद मुनि कहते हैं हमारे जैसे भक्तों ने भक्ति से प्राप्त किया। तो कोई भी भावना क्यों ना हो, हम किसी भी रूप में क्यों ना जाएं, मान लीजिए हमारे हृदय में अगर कुछ पाने की कामना है, कुछ धन की कामना है, संपत्ति की कामना है, जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में थी। ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त करने गए, भक्ति करने, तपस्या करने, तो वो किसी राज्य की प्राप्ति के लिए गए थे, भगवान को प्राप्त करने नहीं गए थे। ध्रुव महाराज ने जब तपस्या शुरू की तो वो चाहते थे कि मेरे पिता से या उनके भी पिता से बड़ा राज्य मुझे मिले, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ये उनकी इच्छा थी। तो वो तो कृष्ण को प्राप्त करने नहीं गए थे, वो भगवान को प्राप्त करने नहीं गए थे, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें मिले। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि लोग उनके पास, जो भक्त उनके पास केवल उनको प्राप्त करने नहीं गए थे, अन्य किसी भावना से गए थे, लेकिन फिर भी भगवान प्राप्त हुए। कोई धन प्राप्त करने गया, कोई कष्टों को दूर करने के लिए गया, कोई जिज्ञासा लेकर गया, भगवान मिले उन्हें। तो कहने का आशय ये है कि इन सबको भगवान क्यों मिले। अरे कोई धन की कामना के लिए गया था तो धन की कामना करने वाले को भगवान कैसे मिल गए, संपत्ति की कामना करने वाले को भगवान कैसे मिल गए, ध्रुव महाराज उनको कैसे भगवान मिल गए। इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमें जानने चाहिए। पहला कारण कि चाहे वो धन की कामना से गए, संपत्ति की कामना से गए, शक्ति की कामना से गए, किसी भी कामना से गए, पहला कारण वो भगवान के पास गए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर व्यक्ति संपत्ति, शक्ति या कुछ और चीज पाने के लिए भगवान के पास नहीं जाते तो भगवान नहीं मिलते। तो पहला कारण। दूसरा कारण, जब जीव भगवान के पास जाते, जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ इच्छाएं लेकर, तो भगवान उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन हृदय से उन इच्छाओं को निकाल देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गए राज्य पाने के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, ध्रुव महाराज ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए। 6 महीना कड़ी तपस्या की उन्होंने राज्य पाने के लिए, खाली पत्ते खा कर रहे, जल पी कर रहे, हवा लेकर रहे, हवा भी बंद कर दी, इतनी कड़ी तपस्या की राज्य पाने के लिए। लेकिन जब कृष्ण आए तो वो कहते हैं स्वामी कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे भूमि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बस अब आपको देख लिया, आप मिल गए, और क्या चाहिए, कृतार्थोस्मि, कृतार्थ हो गया। तो भगवान हृदय से वो इच्छा को भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए पहली चीज वो भगवान के पास गए, तो हमें अगर कोई हृदय में इच्छा है तो हमें भगवान के पास आना चाहिए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। वर्णन है कि अगर हमारे पास कोई इच्छा नहीं है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। अगर हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है, अकामो या फिर सर्व कामो वा, हमारा हृदय इच्छाओं से भरा हुआ है, हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, हमें बहुत मान सम्मान चाहिए, सर्व कामो वा, सारी इच्छाएं हैं हृदय में, या फिर मोक्ष काम उदारधि, या फिर हमारे हृदय में मोक्ष की कामना है। मोक्ष की कामना मतलब हम मुक्ति चाहते हैं। तो या तो कोई कामना नहीं है, या फिर हमारे हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं, या फिर मोक्ष की कामना है। इन तीनों अवस्थाओं में हमें भगवान के पास जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। कैसे जाना चाहिए भगवान के पास, परम पुरुष भगवान के पास? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा। और उस भक्ति के द्वारा, उस तीव्र भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग ऐसी इच्छाओं से भी भगवान के पास गए, तो पहली चीज क्योंकि वो भगवान के पास गए इसलिए भगवान मिले, दूसरी चीज भगवान उनके हृदय से उन वासनाओं को, उन इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं, इसलिए वो भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, और तीसरी चीज भगवान जब भक्ति के भाव से कोई उनके पास आता है तो बाध्य हो जाते हैं अपने आप को उसको देने के लिए। ऐसा वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन शास्त्रों में है। कहा गया है कि भगवान बिक जाते हैं भक्तों के हाथ से, और भक्त क्या करते हैं, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं, कोई बहुत बड़ा योग नहीं, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलकेन वा। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो केवल थोड़े सा तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, तुलसी दल मात्रेण, मात्रेण मतलब केवल बस उतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। जलेन चुलकेन वा, और थोड़ा सा जितना आपकी अंजलि में, हाथ में जल आ जाए, विशेष नदियों का जल, गंगा जल इत्यादि अगर आ जाए, बस थोड़ा सा जल और तुलसी का दल, तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलकेन वा। विक्रीडंती, विक्रीडंती मतलब बिक जाते हैं या खरीद लेता है व्यक्ति भगवान भक्तवत्सल, उन भगवान को जो भगवान भक्तवत्सल है। तो भगवान ऐसे बिक जाते हैं उस व्यक्ति के हाथ जो केवल उन्हें तुलसी का दल और जल अर्पण करता है। तो ऐसे भगवान, और क्यों बिकते हैं, तो क्या कोई भी जल अर्पण करे, कोई भी तुलसी अर्पण करे तो भगवान बिक जाएंगे? भक्ति भाव से। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मुझे ये सब प्रदान करता है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जो भक्ति से नहीं है फिर उस वो भगवान से संबंधी नहीं है। भगवान और भक्त के बीच जो कार्यक्रम जो संबंध है उसे भक्ति कहते हैं। तो इसलिए जब भक्त भगवान के पास जाता है अच्छे हृदय से तो वो भक्ति है शुद्ध हृदय से। तो इसीलिए भगवान तुरंत तैयार हो गए, वो आ गए और अब आने के बाद फिर जब स्वागत किया युधिष्ठिर महाराज ने उनको बिठाया और उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, आपका क्या विचार है, मैं आपका विचार जानना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा बहुत अच्छा विचार है, तुम योग्य हो युधिष्ठिर, आप तो बहुत योग्य हैं, आपको ये यज्ञ करना चाहिए इस यज्ञ को। और फिर उन्होंने बताया कि ये यज्ञ क्या होता है। उन्होंने कहा राजसूय यज्ञ का अर्थ है कि जितने भी राजा हैं पृथ्वी पर वो सब आपके अधीन हो जाएंगे, आप सम्राट हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसे कई राजाओं का पूर्व का वर्णन किया कि पूर्व में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया जो सम्राट कहलाए। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये तो सब ठीक है लेकिन थोड़ी बाधाओं को भी जान लेना चाहिए कि इसमें क्या बाधा है। हरेक राजा को आपके अधीन होना होगा, तो हरेक राजा अगर आपके अधीन होगा तो उनमें कौन कौन होंगे। तो उन्होंने वर्णन करना शुरू किया कि ये हैं ये हैं। और फिर उन्होंने वर्णन किया कि कुछ राजा आपके अधीन नहीं आएंगे, जैसे उन्होंने दुर्योधन इत्यादि का भी नाम लिया लेकिन कहा क्योंकि आपके वंश के हैं वो आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एक नाम उन्होंने लिया, वो था जरासंध। उन्होंने कहा जरासंध आपके राजसूय यज्ञ में एक बहुत बड़ी बाधा है, अन्य कोई भी राजा ठीक है आप उसको परास्त कर सकेंगे लेकिन जरासंध को आप हरा नहीं सकते, उसको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तो जरासंध का वर्णन वो करने लगे कि उन्होंने कहा कि दरअसल चार लोग बड़े शक्तिशाली थे पृथ्वी पर जिनको कोई मार नहीं सकता था, बड़े शक्तिशाली। एक जरासंध, दूसरे एक नाम था हंस, जरासंध के मित्र थे उनका नाम था, और उसका भाई, और चौथे कंस। तो उन्होंने कहा ये चारों इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सारी पृथ्वी पर उन्होंने उपद्रव मचा रखा था क्योंकि इनको कोई मार नहीं सकता था, बड़े शक्तिशाली थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो दो भाई थे वो तो वैसे ही यमुना जी में डूबकर अपने आप मर गए। उसकी कथा उन्होंने सुनाई कि एक बार यज्ञ के समय एक किसी दूसरे राजा हंस को मार दिया गया था। तो जब ये फैल गई बात कि हंस मर गया तो उसके भाई ने सोचा कि मेरा भाई मर गया, वो इतना प्रेम करता था कि उसने यमुना में जाकर अपने प्राण दे दिए। और जब पहले वाले भाई ने सुना कि अरे मेरे भाई ने प्राण दे दिए तो उसने सोचा अब क्या फायदा मेरे जीवन का, उसने भी यमुना में प्राण दे दिए। तो इसीलिए वो दो शक्तिशाली तो ऐसे मर गए। और कंस, श्री कृष्ण कहने लगे उसको मैंने मार दिया लेकिन अब ये एक बचा है, ये इतना शक्तिशाली है जरासंध कि इसने 86 राजाओं को 86 राजाओं को बंदी बनाकर रखा है, केवल 14 को और बनाएगा और उसकी इच्छा है कि वो इन सब को बलि चढ़ाएगा, शिव जी की बलि चढ़ा देगा इनको। 100 एक जब पूरे हो जाएंगे तो उसने प्रण किया कि 100 राजाओं की बलि चढ़ाएगा, राजाओं की, हाँ कोई साधारण सैनिक नहीं। तो सोचिए जरासंध की क्या शक्ति होगी, 86 राजाओं को पकड़कर अपने पास बंदी बनाकर रखा था, इतना शक्तिशाली। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उसको तो मारना आवश्यक है और लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, उसको ऐसे साधारण मारा नहीं जा सकता, युद्ध में उसको हराया नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जाए। तो उस समय युधिष्ठिर ने पूछा कि ये जरासंध है कौन, ये क्या, इसकी कथा इतिहास क्या है इसका, इतना शक्तिशाली हो गया कोई उसको हरा नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि कंस को उसने अपनी दो पुत्रियां दी थी, असती और प्राप्ति, ये कंस की पत्नियों का नाम था। और उसने कहा कि राजा उग्रसेन जिनका पुत्र था कंस, उनके कई और पुत्र थे, कंस बड़ा पुत्र नहीं था, छोटा था। लेकिन जब जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों को इसके विवाह कर किया तो उसने उग्रसेन से कहा, शर्त यह है कि तुम्हें राजा इसको बनाना होगा, मेरी पुत्रियों का पति राजा बनेगा। तो उनके भय से कंस को राजा बनाया गया और कंस ने राजा बनते ही अपने पिता को जेल में डाल दिया। ये कथा बहुत सुंदर है, कभी और वर्णन करेंगे। तो उन्होंने उस समय सारा वर्णन किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि कौन है जरासंध, क्या इतनी शक्ति? तो जरासंध के इतिहास का वर्णन करने लगे भगवान। तो भगवान कहते हैं कि दरअसल मगध देश के जो राजा थे बृहद्व्रत, तो बृहद्व्रत इनके दो पत्नियां थीं लेकिन कोई संतान नहीं हुए। इन्होंने काशीराज की जुड़वा पुत्रियों से, दोनों जुड़वा थीं, उनसे विवाह कर लिया लेकिन बहुत समय हो गया, वृद्ध हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन उन्होंने सुना कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़े तपस्वी आए हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो इस मिलने गए वहाँ पर बहुत सारे उपहार लेकर। तो राजा से जब उन तपस्वी ने पूछा कि क्या बात है, आप अपनी पत्नियों के साथ अपने यहाँ पर आए हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा कि दरअसल मैं वन में जाना चाहता हूँ, अब मैं सब कुछ राज्य त्याग कर अपनी पत्नियों के साथ वन में जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, क्यों वन में क्यों जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और इतने वर्ष हो गए मुझे कोई संतान नहीं, तो अब कैसे राज्य चलेगा, इससे अच्छा मैं छोड़कर चला जाता हूँ। सब जाने वाले नहीं थे लेकिन वो बता रहे थे हमको। तो उस समय उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा वर्णन है कि उन्होंने ध्यान किया और एक वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ वो आम का वृक्ष था, तो आम का फल गिरा, तो उन्होंने उस आम के फल में मंत्र फूंक दिया और वो फल दे दिया कि जाओ ये फल खिलाओ अपनी पत्नी को, उससे पुत्र उत्पन्न होगा। तो राजा ने अपनी पत्नियों को कहा था जब विवाह करा था कि मैं हमेशा आपके साथ समान वर्ताव करूंगा, किसी एक के साथ ऐसा अलग नहीं। तो उन्होंने वो आधा आधा करके दोनों को दे दिया, आधा एक ने खाया आधा दूसरे ने। थोड़े समय बाद दोनों गर्भवती हो गईं और ऐसा हुआ कि जब संतान हुई, रात्रि का समय था, संतान जब पैदा हुई तो दोनों के गर्भ से आधा आधा बच्चा प्रकट हुआ, सीधा ऐसे बीच में से आधा था आधा था, लेकिन दोनों जीवित थे, मरे हुए नहीं। बड़े आश्चर्य की बात, दोनों जीवित थे लेकिन दोनों आधे, एक आंख एक कान एक हाथ एक पैर, ऐसा एक भाग और दूसरे का एक भाग। और रानियों ने देखा दोनों ने, तो ये क्या आ गया, उन्हें बड़ा डर लग गया कि ये कैसा बच्चा पैदा हो गया। उन्होंने जल्दी से अपनी दासियों को बुलाया, बोला इसको बांध कर फेंक दो इसको बाहर, ये यहाँ यहाँ नहीं रहना चाहिए। डर गई वो एकदम देख के, स्वाभाविक है ना किसी माता के ऐसे बच्चा पैदा हो, एक ही आँख एक ही हाथ, उन्होंने डर गई और उन्होंने तुरंत कहा फेंक दो इसको। तो दासियों ने उसको कपड़े में, दोनों को अलग अलग कपड़े में बांधा और सड़क में चौराहे पर जहाँ सड़क में बीच में फेंक दिया उसको, उन दोनों को बाहर ही महल के बाहर गई फेंक दिया। उन्होंने सोचा कोई प्राणी व्राणी खा लेंगे खत्म हो जाए। तो उस समय वहां पर एक राक्षसी विचरण कर रही थी जिसका नाम था जरा। तो जरा ने देखा कि अरे वो तो कुछ खाने के लिए, वो मांस खाने वाली थी, उसको दिखा मांस, तो उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, दोनों टुकड़े उठाए उसने। तो अब लेके जाने वाली थी तो दोनों टुकड़े हाथ में ले जाने से अच्छा उसने सोचा दोनों को एक कपड़े में बांध देती, तो दोनों को जोड़ा और कपड़े में बांधा और जैसे ही जोड़ा वो एक बालक हो गया और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। अभी तक कुछ हलचल नहीं थी उसमें लेकिन जैसे ही जोड़ा तो बालक जोर जोर से रोने लगा। तो अरे जरा ये राक्षसी सोचने लगी ये क्या हो गया, और फिर उसको पता चला कि दरअसल ये राजा का है पुत्र और ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने सोचा कि मुझे राजा को दे देना चाहिए क्योंकि राजा के राज्य में मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे आराम से खाने पीने के लिए मिलता है। और दरअसल राजा उस समय उसकी पूजा भी किया करते थे, ये पहले की बात है। ब्रह्मा जी ने उसे भूदेवी के नाम से उसको एक वरदान दिया था, उसकी पूजा की जाती थी लेकिन बाद में वो राक्षसी बन गई, ये अलग कथा है। तो इसलिए उसने सोचा राजा को, तो जब ये बच्चा जोर से रोने लगा तो सब लोग भाग कर आ गए, रानियां भी भाग कर आई, राजा भी आए और उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है। तो फिर वो जरा ने उनको दे दिया कि आपका पुत्र है, इसको संभालिए। राजा बड़े प्रसन्न हुए, रानियां प्रसन्न हुई, क्योंकि पहले तो आधा आधा देखा था, पूरा दिखा, बड़ी प्रसन्न हुई। और फिर उन्होंने उसको वापस ले गए। तो क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इसकी संधि की, संधि यानी जोड़ा, इसीलिए इसका नाम हुआ जरासंध, जो जरा के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए जरासंध। और जब ये पैदा नहीं हुए थे, जब वो जो मुनि थे, ऋषि मुनि, उन्होंने वो आम दिया था, तो उन्होंने कहा था तुम्हारा जो ये पुत्र होगा इससे वो बहुत प्रतापी होगा और इसको कोई युद्ध में हरा नहीं सकेगा। अगर ये युद्ध करेगा सेना के साथ तो कोई नहीं हरा सकाएगा, इसको हार नहीं जाएगा। ऐसे बहुत आशीर्वाद दिए थे उन्होंने उस समय, बड़ा शक्तिशाली होगा, ब्राह्मणों की सदैव सेवा करेगा, इसके जो नागरिक होंगे इससे हमेशा खुश रहेंगे, सभी राजाओं को ये परास्त करेगा, बहुत से राजाओं को, तो ऐसे सारे उसको वरदान दिए थे। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध में उसको कोई नहीं हरा सकता, इसलिए युद्ध नहीं करेंगे उसके साथ। तो ये सब जब कथा सुनाई, और फिर उन्होंने ये भी सुनाया कि जरासंध धीरे धीरे कैसे शक्तिशाली हो गया, कंस की कथा सुनाई श्री कृष्ण ने बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि आपसे कैसे द्वेष हो गया जरासंध को, आपसे क्या दुश्मनी है? तो श्री कृष्ण ने बताया कि सती, असती और प्राप्ति, ये दोनों उसकी पुत्रियां थी, इनका विवाह कंस से किया, और फिर कंस राज्य करने लगा। कंस की एक बहन थी देवकी, कंस के पिता के भाई की पुत्री थी, तो कंस की एक बहन थी देवकी, राजा देवक की पुत्री। तो वो जब उसका विवाह हुआ वसुदेव से, तो कंस बहुत प्रसन्न था, और कंस ने विवाह के समय खुद आगे आकर वो रथ चलाने के लिए इच्छा जाहिर की कि मैं रथ मैं चलाऊंगा, मेरी बहन का विवाह हुआ है, मैं लेकर जाऊंगा। तो वसुदेव और देवकी को बिठाया रथ पे और खुद सारथी बना, मतलब उसने निम्न स्थिति, राजा कभी सारथी नहीं बनते किसी के, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि मेरी बहन है, मैं चलाऊंगा। तो उस समय एक बहुत भीषण आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो, उसका ही आठवां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा। और जैसे ही कंस ने यह सुना तो उसने सोचा देवकी को ही मार देता हूं, ना देवकी रहेगी, ना आठवां पुत्र होगा, और ना मेरी हत्या होगी। तो उसने तलवार निकाली और मारने के लिए गया देवकी को। उस समय वसुदेव जी ने बड़े आराम से संभाल लिया। वसुदेव जी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में, वैसे किसी दिन इस प्रसंग को कहेंगे, भागवत में बहुत सुंदर संवाद है कि कैसे वसुदेव जी ने केवल अपने शब्दों से कंस जैसे क्रूर व्यक्ति को हत्या करने से रोक दिया। देखिए शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं, तलवार रुक गई शब्दों से। तो वसुदेव जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे। वसुदेव जी को वो जानते थे कि ये कभी झूठ नहीं कहते, तो इसीलिए उन्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जेल में रखा। और जैसे जैसे पुत्र होते वो मारते, देवकी के 6 पुत्रों को वो मार चुके थे कंस, और बहुत क्रूरता से मारता था कंस। ऐसा वर्णन है कि जब देवकी जन्म देती बच्चे को, उसी समय कंस आता, नवजात अभी नया जन्म हुआ है बच्चे का, उसके पांव से पकड़ता और जोर से उसका सर पटक देता था दीवार पर, खून खून निकल जाता, बच्चा मर जाता। ऐसे 6 बच्चों को मार दिया। 7वां बालक जब गर्भ में आया तो भगवान की योजना से उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वो बालक हुए बलदेव जी, बलराम जी। तो उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में योग माया ने स्थानांतरित कर दिया। तो 7वें बच्चे का पता नहीं चला कंस को, 6 को मार दिया। अब 8वां पुत्र आया, और ये 8वां पुत्र ये स्वयं भगवान थे। और कंस ने देखा कि देवकी का मुख बहुत चमकने लग गया और देवकी प्रसन्न रहने लग गई। तो बड़ा आश्चर्य, जिसके 6 पुत्र मारे गए हों, 7वें का पता नहीं क्या हुआ, पति जेल में है, वो जेल में है, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और वो देवकी प्रसन्न है। ये देखकर कंस ने जान लिया, कंस ने जब देवकी को देखा तो जान गया कि मे प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ चुका है। तो इसलिए वो इंतजार कर रहा था कब आठवां पुत्र हो और मैं मारूं। तो खैर ये कथा तो आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार जन्म हुआ श्री कृष्ण का, बड़े हुए वो गोकुल में, और फिर उन्होंने आकर कंस का वध किया मथुरा में आकर। तो क्योंकि कंस का वध श्री कृष्ण ने किया, वो कंस जो जरासंध की पुत्रियों का पति था, इसीलिए उसको द्वेष हो गया और उसने कहा कि मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत बार मथुरा पर आक्रमण किया, जीतने का प्रयास किया। तो ऐसे फिर वो लीला है जब भगवान वहां से स्थान को छोड़कर फिर वो द्वारका में चले गए, नया उन्होंने स्थान बसाया। तो इस प्रकार जरासंध की कथा बताई श्री कृष्ण ने कि ये जरासंध है और इतना शक्तिशाली है, इसको हरा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं, भीम और अर्जुन, हम लोग जाएंगे और हम लोग युद्ध करेंगे उससे। हम में से कोई एक युद्ध करेगा, उसको हरा देगा। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं राजसूय यज्ञ करने के लिए, सम्राट बनने के लिए आप तीनों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर आपको कुछ हो गया, जरासंध का इतना सुन रहे हैं, किसी को कोई हरा नहीं पाया, जरासंध को बहुत शक्तिशाली है, हजारों हाथियों का बल है, तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो अर्जुन वहां खड़े थे, तो अर्जुन से, अर्जुन और भीम ये तो सुन ही नहीं सकते कि किसी से युद्ध नहीं करना है। तो भीम ने भी कहा कि अरे ऐसा कैसे क्षत्रिय है जो युद्ध नहीं करे। और अर्जुन ने भी कहा कि अरे आप क्यों चिंता करते हैं, हमें युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय का धर्म है, तो हम तो युद्ध करेंगे फिर जो भी परिणाम हो। और फिर श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि देखो जो अर्जुन कह रहा है वो सही है, और ये जान लो कि मृत्यु तो वैसे भी आनी है। बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण ने कही कि मृत्यु तो दिन में रात में कभी भी आ सकती है, और क्या ये निश्चित है कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो मृत्यु नहीं आएगी। इस बात को वो कहते हैं कि क्या ये निश्चित है कि अगर युद्ध नहीं किया, हम उसके पास नहीं गए युद्ध करने, तो हम नहीं मरेंगे। मृत्यु आनी है, अवश्यम भावी है, इसलिए अपने कर्तव्य से कभी हमें दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात भगवान ने कही। अगर हम सब भी सदैव इसको याद रखें तो कितनी तीव्रता से हम भक्ति करेंगे। हम जीवन में इन चीजों को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, अपनी मृत्यु को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बहुत थोड़ा समय है, कितना समय है हमें नहीं पता, एक दिन, दस दिन, सौ दिन, हजार दिन, दस साल, बीस साल, कुछ नहीं पता हमें कितना जीवन जिएंगे। इस बात को भूलने के कारण हम भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते और दूसरे श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, इसीलिए भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। तो इसे हमें सदैव याद करना चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं महाभारत में, कभी भी आ सकती है, इसको भूलो मत। तो हमें भी ये भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी आ सकती है, जितना समय है भक्ति कर लें, जितना समय है सेवा कर लें। क्या पता आगे अवसर मिले या ना मिले, अगले जन्म में अवसर मिले या ना मिले, इसी जन्म में कितने साल हमें अवसर नहीं मिला। हम में से बहुत सारे बच्चों का भाग्य है कि वो बचपन से आ गए, वो जन्म से आ गए, लेकिन हम लोगों में से कितने लोग हैं, कई कई साल हमने बर्बाद किए। हम कुछ धन कमाते रहे, हम कुछ और कार्य करते रहे, भगवान की भक्ति नहीं की। तो आगे भी भक्ति करने का अवसर मिलेगा, इसकी क्या निश्चितता है, कोई निश्चितता नहीं। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे नाम एव केवलम, ऐसा कहा गया है, निश्वासे नहीं विश्वासे कदारुद्धति भविष्यति, कदारुद्धो भविष्यति। निश्वासे, ये जो श्वास है कब निश्वास हो जाए पता नहीं, कब चला जाए पता नहीं। निश्वासे नहीं विश्वासे कदारुद्धो भविष्यति, कब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हरे नाम एव केवलम, सतत हमें भगवान का नाम पहले ले लेना चाहिए। तो आप सोचिए अगर हम लोग इस सब भावना में आ जाएं कि हमें पता हो कि बस कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो हम कितनी तीव्रता से भक्ति करें। अगले जन्म के लिए भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए कि अभी ठीक है, अभी हमें पता चला है, अगले बार करेंगे अच्छी तरह। नहीं, इसी जन्म में, क्यों अगले जन्म की चिंता? क्या पता अगला जन्म हमारा मनुष्य होगा या नहीं, और अगर मनुष्य हुआ भी तो उसमें हम भगवान के भक्त बनेंगे या नहीं, हमें भक्तों का संग मिलेगा कि नहीं, भक्ति मिलेगी कि नहीं, ये मंदिर मिलेंगे कि नहीं। क्या पता हम किसी कोई बहुत बड़े परिवार में जन्म ले लें जहां भक्ति ही नहीं होती हो। क्या पता हम ऐसे परिवार ऐसे स्थान में जन्म ले लें जहां लोगों ने कृष्ण का नाम नहीं सुना हो, तो क्या होगा? और मान लीजिए सारी सुविधाएं भी हों, धन भी हो, अच्छा परिवार भी हो, लेकिन फिर भी हम भक्ति नहीं करें, तो अभी जो अवसर मिला है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये जान लीजिए, कभी भी निश्वास है नहीं विश्वास है, अपनी श्वास पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई चिंता नहीं, अभी 50 साल कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग योजना बनाते हैं ऐसे ऐसे होगा, फिर 50 साल बाद ये होगा, इसीलिए लोग कहते हैं भक्ति बाद में करेंगे, अभी नहीं। कब करेंगे? बूढ़े होने के बाद। युवा अवस्था में भक्ति नहीं करनी चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, और कोई करता है तो उसको मना किया जाता है। अरे इतनी यंग एज में, अभी तो तुम्हारे खाने खेलने की उम्र है, और इस उम्र में तुम भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति में लग गए। अरे थोड़ा शादी करो, संतान उत्पन्न करो, संतानों की संतान हो जाए, बूढ़े हो जाओ, आंखों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, दो पांव से चला नहीं जाए, उस समय भगवान की भक्ति करना, क्योंकि वैसे भी तुम बाकी सारी चीजों के लिए बेकार हो जाओगे। ये लोग सोच, ये लोगों का मानना है कि जब सारे काम के लिए बेकार हो जाए, घर वाले लात मार कर बाहर निकालें, तो कोई स्थान नहीं होगा, जाओ मंदिर में बैठो, भक्ति करो, वो ठीक है। क्या भक्ति होगी? आंखों से भगवान दिखेंगे नहीं, उसको चश्मा और मोटा चश्मा लगाना तब भी भगवान नहीं दिखते हैं, चल के आने के लिए मंदिर होता नहीं है, एक बार बैठ जाए तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता। ऐसी अवस्था में भक्ति करेंगे बुढ़ापे में? दो लोग चाहिए कोई पकड़ कर उठाए, हाँ, तो ऐसे हमें नहीं रुकना चाहिए। भक्ति यंग एज युवा अवस्था में ही होनी है। जैसे मान लीजिए कि भक्ति क्या है, भगवान को अपना प्रेम दिखलाना, और हम प्रेम कैसे दिखलाते हैं किसी को? अगर आपको किसी को प्रेम दिखलाना है तो आप कैसे दिखलाओगे? समझिए आपको एक फूल लेकर जाना है, तो कैसा फूल लेकर जाओगे? प्रेम, एक प्रेमी एक प्रेमिका के पास कैसा फूल लेकर जाएगा? मुरझाया हुआ, सड़ा हुआ, बदबू आ रही है, और वो ले जाए, ऐसा फूल भी गिर चुका है और उसको लेके जाएगा, आई लव यू, वो क्या प्रेम है? तो लेके जाना है तो एक अच्छा खिला हुआ फ्रेश, ऐसे हम कृष्ण के पास आ रहे हैं, प्रेम है हमें आपसे, लेकिन क्या लेकर आ रहे हैं? मुरझाया हुआ फूल, बाल सफेद हो गए, गिरने वाले हैं, दांत गिरने वाले हैं, आंखें दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, सारी इंद्रियां समाप्त हो रही हैं, फूल एकदम मुरझा चुका है, आई लव यू, अरे क्या प्रेम है कृष्ण से। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए युवा अवस्था में जब हमारे अंदर शक्ति है, हम इन आंखों से कृष्ण के दर्शन करके शुद्ध हो सकते हैं, हम इन कानों से कृष्ण कथा को सुन सकते हैं, इन हाथों से, इस शरीर से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, तब भक्ति करनी चाहिए। वैसे भी हम लोग बहुत देर कर चुके हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ कर देनी चाहिए। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कौमार अवस्था 5 वर्ष की उम्र है, कर दो भक्ति। तो इसीलिए इस चीज को जानिए जो श्री कृष्ण यहां महाभारत में कह रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, रुकिए नहीं कि मैं कल से करूंगा। एक बार एक भक्त आए, हमने उनसे कहा कि आप भगवान के नाम का जप प्रारंभ कीजिए, तो उन्होंने कहा बस अब अगली जन्माष्टमी जो आएगी उससे प्रारंभ कर दूंगा। हमने कहा जन्माष्टमी तक आप रहोगे कि नहीं किसको पता है, उनको बड़ा बुरा लगा। स्वाभाविक है, किसी को ऐसा कह दे तो बहुत बुरा लगता है, अरे क्या पता आप रहो, लेकिन ये सत्य है। ये लोग बात नहीं करना चाहते इसकी। हमारे घरों में भी ऐसा होता था, अगर कोई मृत्यु की बात कर दे तो माताएं बोलती थी बेच बात नहीं करना, मृत्यु शब्द नहीं निकालना मुख से। तो हमने उनको कहा कि क्या पता आप अगली जन्माष्टमी तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे अभी समय है। ये भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, बाकी सब चीजों के लिए मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश वो देखते हैं मुहूर्त इतना, विवाह मुहूर्त, या फिर और कोई कार्य, दुकान खोलना है, मुहूर्त, भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। भक्ति सबसे बड़ा शुभ कार्य है, तो उसके नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है कि अभी ये आएगा, एकादशी आएगी, जन्माष्टमी आएगा, तब से शुरू करूंगा। आज से, अभी से, जिस समय पता चला भगवान का नाम लेना है, प्रारंभ कर देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि आप चिंता नहीं कीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मरेंगे ही नहीं, कभी ना कभी तो मरेंगे, युद्ध करके मरे अच्छा है। और वैसे भी जब श्री कृष्ण कह रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज, दरअसल युधिष्ठिर महाराज ये जानना, कृष्ण के मुख से सुनना चाहते थे कि हमारी विजय होगी। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर बात की, एक श्लोक वो कहते हैं, वो कहते हैं, निहितश्च जरासंधो मोक्षिताश्च महीक्षित राजसूयश्च मे लब्धो निदेशे तव तिष्ठितः। वो कहते हैं निहितश्च जरासंधो, अब मुझे विश्वास हो गया, आपने कह दिया निहितश्च जरासंध, मर गया। उन्होंने नहीं कहा कि मर जाएगा, मर गया, फिनिश्ड, आपने कह दिया, हो गया, निहितश्च जरासंधो। और मोक्षितः महीक्षितः, जो सारे राजा जो बंदी हैं, महीक्षित महीपति जो सब बंदी हैं वहां पर, वो उनका मोक्ष हो गया, वो मुक्त हो गए। देखिए किस किस तरह से बोल रहे हैं, ये नहीं कि हाँ मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, हो गया, आपने कह दिया, हो गया। और राजसूयश्च मे लब्धो, और मैंने राजसूय यज्ञ कर लिया मतलब होना ही है, आपने कह दिया तो होना है। इसीलिए वो कहते हैं निदेशस्तव तिष्ठता, आपके मुख से निकली बात है, आपने इस बात को कहा है, आपका आदेश है, खत्म, हो गया। ये विश्वास था युधिष्ठिर को। तो ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। शास्त्र भगवान की वाणी है, जो शास्त्र में कहा वो सत्य है, वो होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर शास्त्र कहता है कि आप केवल भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे, वो निश्चित होगा। और कली संतरण उपनिषद में इसको कहा गया है, कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है, और उस संवाद में नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग है, तपस्या नहीं कर सकते लोग, भक्ति कर नहीं पा रहे हैं, क्या क्या उपाय है, कैसे शुद्ध होंगे। और उस समय ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि ये 16 अक्षरों वाला मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल एक ही मार्ग है कलयुग में, इससे ही मुक्त होंगे। और इसको ही कहा गया है कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो इसीलिए इस मंत्र को जप करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने इतना विश्वास दिखलाया कि हो गया, आपने कह दिया तो जरासंध मर गया निश्चित। तो देखिए ये हमें विश्वास होना चाहिए भगवान पर, भगवान ने कह दिया हो जाएगा, क्योंकि होना ही है, भगवान का कौन विरोध कर सकता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करना चाहें उसको तो ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, क्षत्रिय प्रतिज्ञा बड़ी जल्दी लिया करते थे और कृष्ण बड़े परेशान रहते थे, और खास करके अर्जुन, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कल सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, ये महाभारत के युद्ध के समय जब अभिमन्यु का वध हो गया था, तो कल अगर मैंने वध नहीं किया सूर्यास्त तक जयद्रथ का, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने शायद पूछा होगा बाद में, ये क्या किससे पूछ कर ले लिया जो मन में आया बोल देते थे क्षत्रिय। जैसे श्री कृष्ण एक बार उनसे बड़े परेशान हुए थे जब युद्ध के समय कर्ण ने युधिष्ठिर को आहत कर दिया, बहुत घायल हो गए युधिष्ठिर, मारने वाले थे कर्ण, लेकिन कर्ण ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कुंती महारानी को, तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा था मैं केवल अर्जुन को मारूंगा, बाकी किसी को नहीं। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा जाओ युद्ध करना सीख कर आओ, अपमान कर दिया। तो कहीं दूर थे अर्जुन, उनको पता चला, वो भागे भागे आए युधिष्ठिर के पास, क्या हुआ युधिष्ठिर ठीक है कि नहीं। जैसे ही प्रवेश किया, युधिष्ठिर बैठे थे, उनके सब घावों पर दवाई लगाई जा रही थी, और युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन आए तो उन्होंने अर्जुन से पूछा तुमने कर्ण का वध किया। अर्जुन ने कहा अरे मुझे तो अभी पता चला कि आपको चोट लगी, मैं भाग कर आया आपको देखने के लिए। अरे बड़े भाई चोट लग गई पहले वो देखने आए। तो इतना गुस्सा आया युधिष्ठिर को, उन्होंने कहा ये जो तुमने गांडीव अपने कंधों पर धारण कर रखा है धनुष उतार के फेंको, योग्य नहीं हो तुम इसके लिए। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे बड़ा प्रेम दिखला रहा है, प्रेम दिखाने के लिए आया था भाई से और भाई उल्टी बात कर रहा है। तो अर्जुन ने तलवार निकाल ली। तो कृष्ण खड़े थे, बोले क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है, जो भी व्यक्ति मुझे मेरे कंधे से धनुष उतारने को कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। अरे ये तो बड़ी तब श्री कृष्ण बोले इतना बड़ा युद्ध हम युधिष्ठिर के लिए कर रहे हो, उसको ही मार दोगे तो क्या हो? बोले मैंने प्रतिज्ञा की, मैं तो वध करूंगा, इसने कहा कैसे मुझे इन्होंने। तो उस समय भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है एक काम करो, तुम इस समय तुमने ये प्रतिज्ञा ली है ना कि तुम वध करोगे? बोले हाँ। तलवार से वध करोगे ये तो प्रतिज्ञा नहीं ली? नहीं। तो फिर तुम अपमान करो, जब छोटा भाई बड़े भाई का अपमान कर देता है तो बड़े भाई के लिए वध के समान है, उसका वध करने के समान है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो तुम वध करो, तो वध ही करना है ना, अपमान करो। तो उस समय अर्जुन ने बड़ी संतुष्टि से अपमान किया, ये सब आपके कारण हुआ, उसी समय दुर्योधन को मार देना चाहिए था, किसने कहा था जुआ खेलने के लिए, ये वो सब अपमान कर दिया। और उसके बाद उसने तलवार निकाल के अपने गले पर रख ली। कृष्ण ने कहा अब क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने ये और एक प्रतिज्ञा ली है। कौन सी? जो मेरे भाई का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। कृष्ण ने कहा ये क्षत्रिय बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं फिर संभालना पड़ता। तो ऐसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, अभिमन्यु का वध हुआ, दुखी हो गया, किसके कारण हुआ? जयद्रथ, उसने रोक दिया था सबको, सबने बताया पांडव भीम इत्यादि ने कि हम तो सब पीछे पीछे थे अभिमन्यु के, लेकिन जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया सबसे आगे जयद्रथ था, वो जयद्रथ को हटाकर अंदर चला गया, हम लोग भी जाना चाहते थे लेकिन जयद्रथ ने रोक दिया, हम में से किसी को जाने नहीं दिया। तो अर्जुन ने कहा जयद्रथ को तो मैं कल शाम तक, अब देखिए प्रतिज्ञा ले ली, अब भगवान को बचाना है अपने भक्त को। और उस समय उस दिन दुर्योधन ने प्रण ले लिया, कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी को मारो मत कल, केवल जयद्रथ की रक्षा करो बस। अगर जयद्रथ कल सूर्यास्त तक बच गया युद्ध समाप्त, अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएगा, अर्जुन चला गया तो बाकी भाइयों की शक्ति क्या रहेगी, फिर तो हम जीत गए। तो दुर्योधन ने आदेश निकाल दिया उस दिन के लिए कि कोई भी जितने बड़े बड़े योद्धा हैं कोई युद्ध नहीं करेंगे, वो सब जयद्रथ की रक्षा करेंगे। जयद्रथ को छुपा दिया गया, पीछे एक व्यूह बनाया और व्यूह में जयद्रथ को सबसे आखिरी में रखा, और सारे लोग जितने भी बड़े द्रोणाचार्य ये वो सब खड़े हो गए कि कुछ भी हो जाए अर्जुन दुर्योधन अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। दुर्योधन कर्ण सब खड़े हो गए और सब लग गए कि ये नहीं पहुंचना चाहिए। और अर्जुन उस दिन बड़ी तीव्रता से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसको एक ही चीज, वो बार बार सूर्य को ओर देखता और जयद्रथ, सूर्य और जयद्रथ कहाँ है। अब ऐसे होते 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 शाम होने आई, अर्जुन की चिंता बढ़ गई, क्या हो गए जयद्रथ मिल ही नहीं रहा है। उन लोगों ने कौरवों ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी कि भाई जयद्रथ सामने नहीं आना चाहिए सूर्यास्त तक। तो अब ऐसा समय आया कि अर्जुन तोड़ते तोड़ते सबको हराते हराते बस पहुंच गए, थोड़ा सा दूर था जयद्रथ, लेकिन उस समय दुर्योधन दुशासन कर्ण सब सामने आ गए कि कोई उसको जाने नहीं दे रहे हैं। और कृष्ण ने देखा कि अब मुझे ही रक्षा करनी है अपने भक्त की। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग वर्णन है, एक वर्णन है बहुत सुंदर वर्णन है कि उस समय सूर्य निकला हुआ था, सूर्य डूबा नहीं था, लेकिन भगवान ने ऐसी योजना की कि बाकी सब तो सूर्य को देख रहे हैं, जयद्रथ ने देखा कि सूर्यास्त हो गया, केवल जयद्रथ ने बाकी सब देख रहे हैं कि अरे सूर्य निकला हुआ है, युद्ध चल रहा है, सब युद्ध हो रहा है, सब रोक रहे हैं, दुर्योधन इत्यादि रोक रहे हैं, और जयद्रथ जहां पर था छुपा हुआ उसने देखा सूर्यास्त हो गया, तो वो अपने रथ पे निकलकर बाहर आ गया, जोर से हंसता हुआ, हा 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 हा, अब अर्जुन मरेगा, अब अर्जुन मरेगा, हा हा हा। और दुर्योधन और सब देख रहे हैं पागल क्या हुआ इसको, इतना हम लोग बचा, हम सारी शक्ति से बचा रहे हैं, उसको रोक रहे, ये क्या हो गया? और वो लोग चिल्ला रहे हैं, और उनका चिल्लाना सोच के जयद्रथ सोच रहा है हाँ हाँ, ये लोग गुणगान कर रहे हैं, और बोलो हा 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 करता हुआ वो बाहर आ गया। और सही में अर्जुन अभी तक बड़ी चिंता में थे, लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि जयद्रथ खुद सामने आ गया मेरे, और अर्जुन के सामने जाकर हंसने लग गया जोर जोर से, तो अर्जुन को भी हंसी आ गई। वहां पे वर्णन है कि अर्जुन भी हंसने लग गए कि ये पागल हो गया, ये मैं सुबह से इसको ढूंढ रहा हूं मारने के लिए, इसको छुपना चाहिए, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ और ये मेरे सामने आकर हंस रहा है। तो अर्जुन भी हंसने लगे, तो उस समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा अरे हंसना बंद करो, मारो उसको सामने। तो भगवान ने रक्षा की जयद्रथ के लिए, ऐसे कर दिया कि जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त तो हो गया, और सारे देख रहे थे सारे। अब सोचिए उन लोगों की क्या स्थिति हुई होगी, सब कितने परेशान, दुर्योधन कितना जोर से चिल्लाया होगा अरे क्या कर रहे, केवल उसको बचाने के लिए उसने पूरा दिन मेहनत की और वो अपने आप ही सामने आ गया। तो ऐसे श्री कृष्ण, इसीलिए कहा गया है कि राखे कृष्ण मारे के, जिसकी रक्षा कृष्ण करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता, फिर वो ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए। वो कथा आपने सुनी है ना, एक बार एक ऋषि का एक तोता था, तो हमेशा उनके पास रहता, कभी घूमने जा, तो एक बार वो कहीं गया तो उसने देखा कि यमराज किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, उसके प्राण निकाल रहे हैं, और निकालते निकालते उन्होंने तोते की ओर जरा घूम के देख लिया तिरछी निगाह, अभी कोई यमदूत या यमराज कोई देख ले तो आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। तो तोता भागता हुआ आया ऋषि के पास, बचाइए बचाइए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा यमराज ने मेरी ओर देख लिया, वो मेरे पीछे आएंगे, मुझे ले जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, मैं अपनी योग शक्ति से तुम्हें यहां से हजारों हजारों मील दूर भेज दूंगा, क्योंकि तोता तो उतना उड़ नहीं सकता एक दिन में हजारों हजारों मील। बोले अभी अभी का अभी मैं तुम्हें हजारों हजारों मील दूर भेज देता हूं। तो उन्होंने भेज दिया, तो तोता वहां चला गया, हाँ अब मुझे कोई नहीं मारेगा, हजारों हजारों मील दूर। और फिर अचानक वहां पर यमराज आ, यमदूत आए उनको लेने के लिए। तो तोते ने कहा एक मिनट, अरे आप तो वहां मुझे मिले थे, तो आपने मुझे वहां देखा, मैं बचने के लिए यहां आ गया, आप यहां क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि जब हमने तुम्हें वहां पर देखा तो हम इसलिए तुम्हें देख रहे थे कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस तोते की मृत्यु तो हजारों हजारों मील दूर लिखी है, ये यहां पर है, ये कैसे? फिर जब हम यहां पर आए तो तुम यहां पर पहुंच चुके थे, तो हमें यहां ठीक है यहां पर। तो व्यक्ति की जहां मृत्यु होती है वो वहां पहुंच जाता है अपने आप मृत्यु के लिए। तो इसलिए जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, जैसे जयद्रथ को मारना चाहते थे, सारी कौरवों की सेना लग गई लेकिन जयद्रथ मर गया। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज इस चीज को कहते हैं कि जिसको जब कृष्ण ने कह दिया तो फिर ये निश्चित है कि जरासंध मरेगा। तो फिर ये तीनों ने योजना बनाई कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सीधे युद्ध क्षत्रियों की तरह युद्ध नहीं करेंगे उनसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि उसको युद्ध में हरा नहीं सकता है कोई। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर उन्होंने एक योजना बनाई, तो इसका वर्णन हम अगले सोमवार को करेंगे कि कैसे ये तीनों और किस तरह से गए, ये भी वर्णन है। जब राज्य में पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या किया, और कैसे जरासंध से मिले, फिर क्या बातचीत हुई, और फिर आगे कैसे युद्ध हुआ, इस सब का वर्णन अगले सोमवार को करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, हृदय में कोई जिज्ञासा मन में? हरे कृष्ण। वसुदेव और पांडु महाराज का, हाँ, कुंती महारानी ये कृष्ण की बुआ हैं, कृष्ण की बुआ, बुआ मतलब उनके पिता की बहन, राजा कुंती भोज जो थे उनको तो केवल उन्होंने गोद लिया था कुंती महारानी को, तो वो थी वो वसुदेव की बहन। तो वसुदेव की बहन कुंती हैं और कुंती का विवाह पांडु महाराज से हुआ, तो ये उनका संबंध है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी,
हरे
कृष्ण।
मेरा प्रश्न है कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्या ब्रह्मचार्य क्या मना आने वाले हैं?
अच्छा है अगर हो नहीं, कोई अनिवार्य नहीं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस भागवत में वर्णन है, स्थाने स्थित श्रुति गतां तनु वाक मनो भी, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई अपना स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ है, स्थाने स्थित, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ है गृहस्थ रहे, स्थान में स्थित रहे, लेकिन तनु वाक मनो भी, तन से, वाचा से, मन से श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को ब्रह्मचारी ही बनना पड़े। व्यक्ति गृहस्थ रहकर भी भक्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम लोग देखते हैं, कई महान गृहस्थ हुए जो इतने महान भक्त कि उनके सामने सन्यासी झुक जाए, तो ऐसे है। इसलिए किसी भी स्थान में रहकर हम भक्ति कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद कहते थे कि जितने भी युवक हैं उनको ब्रह्मचारी होना चाहिए और जितनी भी स्त्रियां हैं उनको विवाह करना चाहिए तो अगर युवक सारे ब्रह्मचारी होंगे तो स्त्रियां विवाह किससे करेंगे? विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है एक दृष्टि में, कि अगर वो विवाह के जो नियम हैं उनका पालन करे, गृहस्थ जीवन के नियम का पालन करे, अपने सारे परिवार को भक्ति में लगाए और स्त्री संग केवल संतान की उत्पत्ति के लिए करें, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। और इनफैक्ट गृहस्थों के लिए ब्रह्मचारी होना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए गृहस्थ भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, और भक्ति तो कोई भी कर सकता है किसी भी आश्रम। ठीक है, ठीक है, अभी भगवान के दर्शन करेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन थोड़े समय, फिर आप लोग कृपया प्रसाद लेकर ही जाइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।